ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने बच्चों को स्वयं पे ध्यान देने, सेवा का करने पर और नशा भी चढ़ाया है, लेकिन सावधानी भी दी है। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमको विश्व का मालिक बना रहे, लेकिन विश्व का मालिक कौन बन सकेंगे? तो बाबा ने एक बहुत अच्छी बात फिर से याद कराई कि जब तक ब्राह्मण नहीं बनते हैं तब तक विश्व का मालिक बन नहीं सकेंगे। और ब्राह्मणों के लिए भी बाबा बार बार ध्यान खिंचवाते हैं, कई अच्छे पुरुषार्थी हैं, कोई कम है। फिर क्या होता है कि माया की भी सावधानी दी है, माया आती है और क्या से क्या करा देती है। बाबा ने फिर सेवा के लिए कहा कि चैरिटी बिगिंस एट होम। बाबा हमेशा इसके लिए दो बातें बताते हैं। एक तो बाबा कहते हैं जहां आप रहते हैं लौकिक में उनकी भी सेवा करो, उनको भी मालूम पड़े कि आप ये कौन सा अमूल्य ज्ञान ले रहे हैं। और आज बाबा ने कहा कि भक्तों की भी सेवा करो। अब भक्तों की सेवा के लिए बाबा एक बात का बहुत सुंदर बच्चों को समझाते हैं कि जब भी भक्तों को समझाओ कभी भी किसी की धर्म की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाने। और बाबा भी बच्चों के लिए कहते हैं कि तुम सबसे बड़े से बड़े भगत थे, हम भी तो भगत थे, फिर हम भक्तों को ऐसा क्यों कहें? तो बाबा कहते हैं भक्तों को संदेश दो, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के होंगे वो स्वतः ही बाबा के बच्चे बनेंगे, और जो बाकी और धर्म वाले आएंगे उनको केवल योग ही अच्छा लगेगा। नहीं तो क्या है, अभी भी कई कई स्थानों पर बच्चे उनके समझाने का ढंग ऐसा होता है, कुछ ना कुछ बात ऐसे कह देते हैं जो दूसरे धर्म वालों के लिए रिस्पेक्ट का रूप नहीं होता। बाबा कहते हैं हर एक को रिस्पेक्ट देनी है, भक्तों को भी रिस्पेक्ट देना है, उनको भी प्यार करना है। और ये धर्म संस्थापक जो आए उन्होंने धरती को थमाया, तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना है। उनको बाबा का परिचय दो, अपने पिता का परिचय दो, परमात्मा का परिचय दो, जिससे वो अनुभव कर सकेंगे। फिर बाबा ने कहा कौन सा एक ऐसा काम है जो सारी दुनिया में कोई नहीं कर सकता सिवाय बाबा के, वो है विश्व में शांति स्थापन। अभी भी हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व की हालत क्या हो रही है, कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन गिरावट की ओर जा रहा है, लेकिन ये कार्य कौन करता है? श्री बाबा ही करते हैं, ब्रह्मा और ब्राह्मण बच्चों के द्वारा। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा की महावाक्य। आज की तारीख है 22 मई 2026। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव बाबा के व देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। क्या बताया बाबा ने कि जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के पुजारी हैं, उन्हें पहले ज्ञान देने का तरीका भी चाहिए, नहीं तो शिव के पुजारियों को भी पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के व देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। आज का क्वेश्चन है, बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते हैं और क्यों? बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते हैं और क्यों? इसका उत्तर है, सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य एक बाप का है। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन कर नहीं सकते क्योंकि अशांत है, बाबा का परिचय नहीं है, लड़ते झगड़ते छोड़ो लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मनुष्य विश्व में शांति स्थापन कर नहीं सकते क्योंकि सब विकारी हैं। शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने। बाप को न जानने के कारण क्या बन गए? बाबा कहते ना, न जानने के कारण निधन के बन गए। बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए हैं। आज का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। बाबा हमेशा कहते गली तो क्या, बाबा के गले के हार हैं बच्चे। तो जब ये गीत आता था तो बाबा कहते थे बाबा तो बच्चे जो है बाबा के गले का हार है, तो पक्का रहे कि हम बाबा के गले का हार हैं। और बाबा तो बच्चों को रोजरी माला बना देते हैं ना। तो गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ भी घड़ी घड़ी बताना पड़े। क्यों? क्योंकि ओम शांति का अर्थ कोई भी जानते नहीं, वो ओम को परमात्मा कह देते। लेकिन बाबा कहते ओम क्या है? आत्मा है, और आत्मा का स्वधर्म शांति है। क्योंकि ओम शांति का अर्थ कोई भी जानते नहीं, जैसे घड़ी घड़ी बोलना पड़। बाबा बच्चों को बार बार क्यों बोलते हैं ओम शांति? बाबा बोलते थे तो बाबा कभी बार कहते थे बच्चे भी तो रेस्पॉन्स करे ना। फिर बाबा कई बार दो बार ओम शांति करते। बाबा कहते एक बार बाबा ने कहा ओम शांति, एक बार दादा ने कहा। तो इसलिए बाबा कहते हैं जैसे घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है मन मना भाव, अर्थात बेहद के बाप को याद करो। ओम का अर्थ कह देते हैं ओम माना भगवान। दुनिया में भगत क्या कहते हैं? वो ओम का अर्थ भगवान कहते हैं। ओम का अर्थ कह देते हैं ओम माना भगवान। बाप कहते हैं ओम अर्थात मैं आत्मा, ये मेरा शरीर। परम पिता परमात्मा भी कहते हैं ओम। पर बाबा भी क्यों कहते हैं ओम? क्योंकि शुरू में जब बाबा को साक्षात्कार हुआ तो ओम की ध्वनि, बाबा ने ओम कहा। तो बाबा कहते परम पिता परमात्मा भी कहते हैं ओम। मैं भी आत्मा हूँ, मैं परम धाम में रहने वाला हूँ। तुम आत्माएं जन्म मरण के फेरे में आती हो, मैं नहीं आता हूँ। तुम चक्कर लगाते लेकिन मैं नहीं आता हूँ। हाँ, मैं साकार में आता जरूर हूँ, जन्म मरण के फेरे में नहीं आता हूँ। लेकिन फिर बाबा स्पष्ट करें, हाँ मैं साकार में आता हूँ जरूर। क्यों आता हूँ? क्योंकि तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का सार समझाने के लिए। और कोई तो ये समझा ही ना सके। और कोई समझाएगा? कोई नहीं समझा सकता है। अगर निश्चय नहीं तो सारी दुनिया में भटकना चाहिए? बाबा फिर कई बच्चों को कह रहे हैं, नहीं निश्चय है तो जाओ सारी दुनिया में चक्कर लगाओ, ढूंढो कहाँ है। सारी दुनिया चक्कर लगा के फिर भी क्या आएगी? तो ना चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। तो बाबा क्या कहते हैं, अगर निश्चय नहीं है तो सारी दुनिया में भटकना चाहिए और ढूंढना चाहिए। और कोई है जो अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं? बाबा कहते जाओ ढूंढो, पता करो कौन है ऐसा जो अपना भी परिचय दे और सृष्टि के आदि मध्य अंत की भी नॉलेज दे। परम पिता परमात्मा के बिगैर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई बता न सके, कोई राजयोग सिखला न सके, पतितों को पावन बना न सके, न राजयोग बता सके, न राजयोग सिखला सके, न पतितों को पावन बना सकते। पहले पहले जो भी देवी देवताओं के पुजारी हैं, उन्हीं पर पुरुषार्थ करो, समझा लेगा। शुरू में बाबा ने बहुत कहा था, देवताओं के पास जाओ, मंदिरों में जाओ। बाबा कई बार मुरली में भी कहते, बिरला जो इतने मंदिर बनाते हैं उसको भी समझाओ। तो अभी तो क्या है, चारों ही तरफ समझाते हैं, तो उनको समझाते भी हैं, बाबा का परिचय देते हैं, तो प्यार से सुनते हैं ना। तो बाबा कहते हैं, पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने उनको समझाओ, उन्हों पर पुरुषार्थ करो समझाने का। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही पूरे 84 जन्म लिए। अच्छा, 84 जन्म वाले हाथ खड़ा करो, सब 84 जन्म वाले है ना, कोई ऐसा नहीं जो कम लेगा। तो बाबा कहते, आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, वही अच्छी रीति समझ सके। जो बाबा के बच्चे हैं, 84 जन्म वाले हैं, जैसे ज्ञान सुना कोई क्वेश्चन नहीं, बस सुनते ही बाबा के बन गए, वही अच्छी रीति समझ सकेंगे। बाद में आने वाले 84 जन्म ले न सके, ये सुनेंगे भी वह जो देवताओं के पुजारी होंगे और जो गीता पढ़ने वाले होंगे। तो देवताओं के पढ़ने वाले, गीता में सिर्फ ये भूल की है कि भगवान के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो गीता पढ़ने वालों को भी समझाना चाहिए, पूछना चाहिए, परम पिता शिव परमात्मा से आपका क्या संबंध है। उनको भगवान कहेंगे तो वो लोग कहेंगे भगवान कहेंगे, तो बाबा कहते पहले उनसे प्रश्न पूछो, फिर वो जो जवाब दे, फिर उसके आधार से उनको समझाओ। उनको भगवान कहेंगे, श्री कृष्ण तो दैवी गुण वाले हैं, उनको तो दैवी राजधानी थी, उसमें सब दैवी गुण वाले थे, अब वही पूज्य से पुजारी बन गए हैं, तो कोशिश कर पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को उठाना चाहिए, मीन्स उनको समझाना चाहिए। और अभी क्या करते हैं, कई लोग समझते हैं बाहर वाले ये सनातन धर्म के नहीं, तो हमको तो पक्का है हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। तो इस तरह से समझाओ जो लोगों को रियलाइज हो कि ये वास्तव में बाबा के बच्चे जो हैं, ब्रह्मा कुमारी भी कौन है, आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। और आदि सनातन जो देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया, उसको फिर से हम स्थापन कर रहे हैं। तो कभी कभी कई ऐसे समझाने का ढंग होता है, उनको समझ में कम आता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो इस बात का भी सबको ध्यान रखना है, जो यहाँ ओम शांति भवन समझाते, ओम शांति भवन या पार्टी को समझाते, उन भाइयों को मैं फिर से ध्यान खिंचवा रही हूँ। कभी कभी इतना फास्ट बोलते हैं कि सुनने वाले के कान में बैठा या नहीं बैठा, दिमाग में बैठ, धीरे धीरे बोलो, 2 पॉइंट समझाओ, बाबा का परिचय दो, अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को बताओ और दैवी गुण धारण, ये 3 बातें पहले बताओ बाबा से। बाकी तो इतना ज्ञान एक दिन में नहीं बैठता है। जो ओम शांति भवन में गाइड का काम करते, हाथ खड़ा करो, हैं बैठे है ना, बहुत है, कई तो बहुत अच्छा समझाते हैं, ऐसा नहीं कि सभी है, कोई तो ओवरडोज मत दो, ये भी हमें ध्यान रखना। बाबा ने क्या समझाया था शुरू में, तुम आत्मा हो, बस इतना ही बताया, उसका अनुभव करा, अभी अनुभव कराओ, ये नहीं ज्यादा ज्ञान अनुभव कराना है। कोई जो सुनाने वाले नीचे भी है वो भी ध्यान देंगे। अब बाबा कहते हैं, कोशिश कर पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को उठाना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम, जो शिव के पुजारी हैं उनको भी समझाना पड़े। शिव आता जरूर है, तब तो उनकी जयंती मनाते हैं। वह परम पिता परमात्मा है, जरूर आकर के राजयोग सिखाते होंगे, और कोई भी मनुष्य मात्र सिखला न सके। मनुष्य क्या सिखाते हैं, हठ योग सिखाते हैं और कई प्रकार की चीजें सिखाते हैं, लेकिन राजयोग वो नहीं सिखाते। जब उनसे बात करते हैं, उनको राजयोग के बारे में बताते हैं ना, तो वो भी खुश होते हैं, कहते हैं हम तो दूसरे योग सिखाते हैं, तो वो भी उनको अच्छा लगता है ना। तो बाबा कहते हैं और तो कोई सिखला न सके। श्री कृष्ण को व ब्रह्म को भगवान नहीं कहा जाता है, जबकि सर्व का सदगति दाता बाप एक ही है। वह ज्ञान का सागर होने के कारण सबका शिक्षक भी, बाबा बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। किस लिए शिक्षक है, क्योंकि ज्ञान का सागर होने के कारण शिक्षक भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी दूसरा कोई भी जानते नहीं। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर चैतन्य बीज रूप भी कहते हैं। ये जो उल्टा झाड़ है उनके आदि मध्य अंत का ज्ञान उस बीज के पास होगा। वैसे भी गीता में बताया ना, ये उल्टा वृक्ष है, और बाबा कहते हैं ये जो उल्टा झाड़ है इसका बीज है ऊपर और ये वृक्ष के टैन टैलियां सब नीचे है, लेकिन उसका ज्ञान किसके पास है, बीज के पास है। इसलिए मुझे ज्ञान का सागर ऑल माइटी अथॉरिटी कहते हैं। अथॉरिटी क्या चीज है, अब बाबा वो भी स्पष्ट कर रहे हैं। सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों आदि सबको जानते हैं, तुम बच्चों को भी समझा रहे। बाबा हर शास्त्र के अथॉरिटी है, उसका रहस्य क्या बाबा जानते हैं, फिर बच्चों को समझा रहे। ये शास्त्र सुनाने वाले कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है, परंतु वह तो हो नहीं सकता है। वो लाखों वर्ष कह देते हैं, लेकिन बाबा क्या कहते कैसे हो सकता है, तो बाबा स्पष्ट करते हैं ना। ये वैरायटी धर्मों का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, उनकी आयु भागवत ने लंबी चौड़ी लिख दी। भागवत जो है उसमें चरित्र है, भागवत में सारी गीता में ज्ञान है, भागवत में सारे चरित्र है। कभी गीता में कभी भागवत में कुछ कुछ लिख देते हैं ना, तो बाबा कहते उनकी आयु भागवत में लंबी चौड़ी लिख दी है। अब भागवत कोई धर्म शास्त्र तो नहीं है, भागवत में सारे चरित्र है, क्या किया कैसे किया, वो कैसे सब कुछ किया, दुखों से छुड़ाया, तो बाबा कहते उसको धर्मशास्त्र नहीं, कि वो कहानी के रूप में है। गीता धर्मशास्त्र है, उनसे देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। बाकी भागवत महाभारत आदि उनसे कोई धर्म स्थापन नहीं होता है, वो तो श्री कृष्ण की हिस्ट्री लिखी है। अब भागवत में श्री कृष्ण की पूरी चरित्र लीलाएं हैं, हिस्ट्री लिखी हुई है। बाप समझाते हैं बच्चे तुम देवी देवता धर्म वालों को समझाओ कि तुमने ही 84 जन्म लिए, कि तुमने ही सारी सृष्टि के अंदर पूरा चक्कर लगाया है। सतयुग में सिर्फ भारत ही था और कोई धर्म नहीं था, भारत ही स्वर्ग था, भारत ही ऊंच से ऊंच गाया जाता। भारत की महिमा इतनी है, जितनी महिमा करो उतना कम है। सारे विश्व के सामने भारत शुरू से लेकर के महान रहा है, और अभी भी सारे विश्व के देश जो हैं वो भारत की ऊंची नजर से देखते हैं, क्योंकि वो देखते हैं ना कि भारत के लोग कितना आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं भारत ही ऊंच से ऊंच गाया जाता है। फिर परम पिता परमात्मा शिव का बर्थ प्लेस भी है। भारत ऊंचते ऊंच क्यों है, भारत ही अखंड भूमि है, भारत ही स्वर्ग था। सबसे बड़ी बात जो है परम पिता परमात्मा शिव का बर्थ प्लेस है और ये देवी देवताओं का राज्य था, इसलिए बाबा कहते हैं। फिर परम पिता परमात्मा शिव का बर्थ प्लेस है जो आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। शिव की पूजा भी यहाँ होती है, रियल शब्दों में अच्छी तरह से पूजा यहाँ करते, भल विश्व के कोने कोने में करते हैं। और इस बात पे भी सबको ध्यान रखना है, कई कई ज्यादा ही ज्ञानी होते हैं ना, तो विश्व के अंदर जो भी अपने धर्म संस्थापक अपने इष्ट को मानते हैं उसको भी ऐसे कह देते तो वो क्या समझाने का ढंग अलग होता है। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा समझाओ कि शिव ही सबका परम पिता परमात्मा है। शिव की पूजा भी यहाँ होती है, जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। जो पति दुनिया में ही आया होगा पुकारते भी सब हैं, पति पावन आओ, भारत पावन था। फिर 84 जन्मों का चक्कर लगाया, जो पावन स्वर्गवासी थे अब वह नरकवासी पतित बने हैं। पावन बनाया श्री बाबा ने और पतित बनाया किसने, पतित बनाया किसने बनाया, माता ने बोलो रावण ने, पतित बनाया रावण ने। इस समय है ही रावण का राज्य है, हर नर नारी में 5 विकार हैं, सतयुग में तो विकार थे ही नहीं, निर्विकारी थे। अब तो पतित हैं तब तो बुलाते हैं, निर्विकारी होते पावन होते तो बुलाने की जरूरत नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं अब तो पतित हैं तब तो बुलाते हैं, आओ आकर हमको फिर से पावन बनाओ, आओ आकर हमको फिर से पावन बनाओ, सतयुग में हम सो पावन थे। देखो बाबा याद करा रहे, सतयुग में तुम बच्चे क्या थे, हम सो पावन थे, हम सो फिर पतित बने। 21 जन्म राम राज्य में थे, अब तो रावण राज्य है, सब विकारी हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देते हैं, अब इन पर जीत पाए पावन बन। उस दिन भी बाबा ने कहता है ना कि काम कितना बड़ा है, क्रोध क्या करना है, कैसे जीतना है, तो बाबा कहते अब इस पर जीत पाकर के पावन बनो। तुमने जन्म जन्मांतर पाप किया, कितने पाप किए होंगे सोच भी नहीं सकते ना। बाबा कहते कोई बात नहीं, जो किया भूल जाओ, अभी उसको कैसे पावन बनना है बाबा की याद से। तुमने ही तो जन्म जन्मांतर पाप किए, सबसे तमो प्रधान बने हो, आत्मा में खाद पड़ती गई, पहले गोल्डन एज में थे, फिर सिल्वर एज में आए, फिर कॉपर में आए और अभी आयरन में एज। अब आयरन एज के बाद क्या बन गया है, पत्थर एज हो गया, चारों तरफ पत्थर है कांच है, जहां भी देखो पत्थर के मकान होंगे, कांच के होंगे, मिट्टी के होंगे। तो बाबा कहते देखो क्या हालत हो गई है, पहले तो गोल्डन एज थे, फिर सिल्वर एज, फिर कॉपर, फिर आयरन, खाद पड़ते पड़ते सीढ़ी उतरते आए। भारत की ही तो बात है ना, सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म, फिर वही भारतवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी और फिर शूद्रवंशी बनते हैं, आत्मा इम्प्योर बनती है। बाप कहते हैं मैं आकर कल्प कल्प भारत को ही स्वर्ग बना, भारत को स्वर्ग बनाना मीन्स सारी सृष्टि को स्वर्ग बना, भारत का ही राज्य होगा, सारा विश्व एक होगा और पूरा ही भारत विश्व, पूरा ही विश्व एक भारत होगा, तो सारे विश्व को बाबा कहते स्वर्ग बनाता हूँ। फिर रावण नरक बनाते हैं, ये ड्रामा भी बना हुआ है। अब बाप समझाते हैं ज्ञान सागर तो शिव बाबा है ना, ऊंचते ऊंच शिव है, सबका पूज्य पहले पहले उनकी पूजा होती, पहले पहले द्वापर में आते हैं, शिव की पूजा करते हैं, फिर क्या करते हैं, शिव की पूजा के साथ फिर किसकी पूजा करते हैं, बोलो बहने भाई बोलो, किसकी पूजा होती है फिर, आपकी होती है कि नहीं, जिसकी पूजा होती है हाथ खड़ा करो, सबकी होती है, सब शिवलिंग के रूप में बाबा के साथ बैठ जाते, शिवलिंग के साथ शालिग्राम के रूप में बाबा के साथ बैठ जाते, तो बाबा की भी पूजा होती, कई कई मंदिरों में तो इतने शालिग्राम होते तो एक एक को ऊपर पानी चढ़ाना भी मुश्किल हो जाता है, फिर ग्रुप के ग्रुप कहेंगे 10 को हम पानी चढ़ाते 10 को आप चढ़ाओ, तो आजकल तो देखो शालिग्राम भी कितने बनाते, वो भक्ति में आप सबकी पूजा करते ना, तो बाबा कहते हैं, बाप कहते मैं आकर कलप कलप भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, फिर रावण नरक बनाते, ये ड्रामा बना हुआ है। अब बाप समझाती है, ज्ञान सागर तो शिव बाबा है ना, ऊंचते ऊंच शिव है, सबका पूज्य, पहले पहले उनकी पूजा होती है, वह है बेहद का बाप, तो जरूर उससे बेहद का वर्षा मिलेगा। बेहद का बाप है, छोटी मोटी चीज थोड़ी देगा, बड़ा कोई रिच पर्सन आएगा तो बड़ी चीज देगा ना, तो बाबा कहते वो बेहद का बाप है, तो जरूर उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारतवासी भूल गए हैं, भगवान एक निराकार को कहा जाता है, उनको मनुष्य भी याद करते, बाबा कहते सारी दुनिया के मनुष्य परमात्मा को याद करते हैं, ऐसे नहीं सब भगवान ही भगवान है, दोनों बातें अपोजिट के, एक तरफ उनको याद करते हैं और कई कई कह देते वो भगवान ही भगवान है, बाबा कहते ऐसे नहीं सब भगवान ही भगवान है, एक तरफ भगवान को याद करते हैं, फिर ग्लानी भी करते हैं, क्या ग्लानी करते, ठिक्कर भीतर सब में है, कच्छ मच्छ में है, तो बाबा कहते एक तरफ याद करते हैं फिर ग्लानी भी करते हैं, एक तरफ कहते सर्वव्यापी फिर कहते पतित पावन आओ, फिर ये अपोजिट, एक तरफ कहते सर्वव्यापी फिर दूसरी तरफ उसको बुलाते, एक तरफ कहते सर्वव्यापी फिर कहते पतित पावन आओ, बाप आकर ब्रह्मा तन में, बाप आकर ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही समझाते, बाप आकर के ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को समझाते हैं, अभी तुम ब्राह्मण कौन हो, अभी ब्राह्मण कौन हो बताओ, है ब्राह्मण कौन हो, पहले जमाने में ब्राह्मण क्या करते थे, ब्राह्मण चोटी, चोटी मीन्स टॉप पर हो, अभी ब्राह्मण तुम चोटी हो अथवा टॉप पर हो, अभी तुम ब्राह्मण चोटी हो, ब्राह्मणों के ऊपर ठहरा शिव, विराट रूप में देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते, विराट रूप का चित्र देखा है किसी ने, जिन्होंने नहीं देखा वो हाथ खड़ा करें, विराट रूप का पहले चित्र भी होता था, अभी विराट रूप का पहले चित्र भी बनाते थे, अभी कहीं कहीं पर बहुत कम मिलते हैं, लेकिन अपना आध्यात्मिक संग्रहालय ना तो वहाँ विराट रूप का बहुत सुंदर एक चित्र और बहुत सुंदर कलाकारी से बनाया गया है, सबने अधिकतर देखा होगा या सुना भी है, कभी भी टाइम मिले तो वहाँ जाके देख भी सकते हैं, तो बाबा कहते हैं अभी तुम ब्राह्मण चोटी हो, ब्राह्मणों के ऊपर ठहरा शिव, विराट रूप में देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं, ब्राह्मणों का नाम ही नहीं क्योंकि देखते हैं ब्राह्मण तो है विकारी, अब ब्राह्मण भी क्यों नहीं दिखाते उसमें, क्योंकि ब्राह्मण ऊपर नीचे आज देखो तो टॉप पर है, बाबा भी क्या करते थे साकार में माला बनाते थे, माला बनाते थे और माला में कोई जो है दूसरे नंबर पे, और थोड़े दिन के बाद फिर क्या होता था उसका नंबर चला जाता था 50 से 60, तो निराश हो जाता था मेरा दूसरा नंबर मैं इतना पीछे कहाँ चला गया, फिर बाबा ने माला बनाना बंद कर दिया, तो बाबा इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं ब्राह्मण क्या करते हैं, बहुत खेल करते, कभी देखो तो ऊपर कभी देखो नीचे कभी देखो दाएं कभी बाएं घूम जाते ऐसे ना, इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मणों में भी पुरुषार्थ के अनुसार अपनी स्टेज बनती है, तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण तो विकारी है, क्योंकि अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं ना निर्विकारी बनने का, फिर देवताओं से उत्तम कैसे कहेंगे, हैं विकारी लेकिन बाबा के लिए देवताओं से उत्तम कैसे कहेंगे। बाप समझाते हैं, वे गाते भी हैं, ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। अब देखो बाबा ने दोनों बातें कही, एक तरफ ब्राह्मणों को नहीं दिखाते, फिर भक्ति में क्या गाते, ब्राह्मण देवी देवताएं नमः, यही ब्राह्मण जाकर के देवता बनते। गाते भी हैं ब्राह्मण देवी देवताएं नमः, एक्यूरेट कोई जानता ही नहीं इनका राज्य कब था, स्वर कहाँ से आया। अब तुम समझते हो बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा नरक का विनाश करते हैं, महाभारत की लड़ाई भी तो लगी थी ना, जिससे स्वर्ग के गेट्स खुले थे। गाते रहते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं, गायन करेंगे सब कुछ करेंगे, कब होगा कैसे होगा हमारा रोल क्या होगा, बाबा कहते कुछ भी नहीं समझते। गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं, ये भी दिखाते हैं कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, बरोबर अभी वही पाठ चल रहा, चारों तरफ देख रहे ना क्या हाल हो रहा है। बाबा कहते बरोबर अभी वही पाठ चल रहा है, 5000 वर्ष पहले भी लड़ाई लगी थी, तब पतित दुनिया विनाश हुई थी। अब बाबा कितना अच्छा बता रहे हैं, ये जो लड़ाई लगी या जो भी हुआ क्या हुआ, पतित दुनिया विनाश हुई, पावन दुनिया की स्थापना हुई। गीता का ज्ञान जब सुनाते हैं तो कहते हैं 3 सेनाएं थी, पता नहीं कौन सी 3 सेनाएं, यूरोपवासी यादव सेना जिन्होंने साइंस से मुसल इन्वेंट किए। अब देख रहे हैं कितने मुसल्स बना दिए, ऐसे ऐसे मुसल बनाए कि एक स्थान पर बैठे हुए पूरा का पूरा शहर, क्या आधे कई शहर तबाह कर देते ना। तो बाबा कहते देखो कैसी बुद्धि हो गई। तो गीता महाभारत में बताते हैं, गीता का ज्ञान जब सुनाते हैं तो कहते 3 सेनाएं थी, यूरोपवासी यादव सेना जिन्होंने साइंस से मुसल्स इन्वेंट किए। गीता के पूरे 5000 वर्ष हुए। बाप समझाते हैं ये 3 सेनाएं अभी हैं। कौन कौन सी है, एक है यादव, फिर कौरव और पांडव, ये तीनों सेनाएं अभी स्पिरिचुअल अर्थ में बाबा बताते हैं कि तीनों सेनाएं अभी यहाँ पर ही है पूरे विश्व के अंदर, वो अपना परिवर्तन का कार्य अपने अपने ढंग से कर रहे हैं। ये बाप समझाती है 3 सेनाएं अभी भी हैं, गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात परम पिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है, जानते नहीं है सिवाय तुम्हारे कोई की प्रीत बुद्धि नहीं। बाबा के बच्चे प्रीत बुद्धि है ना, बाबा को जानते हैं, बाबा से प्यार से बातें करते हैं, बाबा भी बच्चों से बात करते हैं, तो बाबा को भी खुशी होती है, सिवाय तुम बच्चों के दुनिया में कोई भी प्रीत बुद्धि नहीं है। सबका ही विनाश, सबके ही विनाश काले विपरीत बुद्धि है, बाकी तुम पांडवों की है प्रीत बुद्धि। प्रीत भी बुद्धि जो अटूट होनी चाहिए, अचल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि डावाडोल आज है कल फिर घूमने लगे। तो बाबा कहते हैं बाकी तुम पांडवों की है प्रीत बुद्धि, तुम शिव बाबा को याद करते हो, जानते हो क्यों याद करते हो, तुम शिव बाबा को याद करते हो, जानते हो शिव बाबा हमको 21 जन्मों का वर्षा देने आए हैं, तुम्हारी प्रीत बुद्धि है शिव बाबा के साथ। बाबा कहते बच्चों की प्रीत बुद्धि है शिव बाबा के साथ, बाकी तो कोई बाप को जानते ही नहीं। तो 3 सेनाएं हुई ना, जो बाबा को जानते हैं वो कौन है, जो नहीं जानते, जो लड़ते झगड़ते वो कौन है, और जो मिसाइल्स क्रिएट करते वो कौन है। तो बाबा कहते 3 सेनाएं हुई ना, तुम हो पांडव सेना, विनाश काल तो है ही, तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है। शिव बाबा कहती है, तुम पवित्र बनेंगे तो नई दुनिया का मालिक बनेंगे। बाबा ने कितना सही तरीका बता दिया कि मौत सामने खड़ा वो तो देख ही रहे, और उधर बच्चों को क्या कहा कि तुम पावन बनो तो नई दुनिया के मालिक बनेंगे। सचिव में एक ही देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था, अभी और सब बाकी सभी धर्म है। सचिव में केवल एक देवी देवता धर्म था और कोई नहीं था। अब बाबा कहते अभी सब धर्म है, लेकिन एक जो धर्म था वो प्राय लोप हो गया है। सचिव में एक ही देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था, अभी और सब धर्म है, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। वो बाबा कहते प्राय लोप हो गया है, अपने को देवी देवता समझते नहीं है, कहते हैं अपने को क्या कहते हैं, हम विकारी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। भक्ति में गाते रहे तो मैं विकारी हूँ, पतित हूँ, आकर के पावन बनाओ, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो बाबा कहते हैं अपने को कहते हैं विकारी हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप को याद करते हैं, तुमको एक बाप को ही याद करना है, बाप को याद करने बगैर पावन नहीं बनेंगे, पक्का एक ही गारंटी। पावन बनना है तो सहज तरीका है कि बाप को याद करना, और बाबा ने फाइनल बोल दिया बाप को याद करने बगैर पावन नहीं बनेंगे, तो ऊंच पद भी नहीं पाएंगे। अपवित्र दुनिया का जब विनाश हो तब नई दुनिया में शांति हो। मनुष्य कोशिश करते हैं भारत में और दुनिया में शांति कैसे हो, परंतु वह तो एक बाप का ही काम है। एक तरफ शांति के लिए क्या क्या करते रहते हैं और आपस में मिलते हैं और सब कुछ ऐसे करते भी हैं और राइटिंग में भी कर लेते, फिर दूसरे दिन देखो तो फिर लड़ रहे हैं। तो बाबा कहते ये उनका काम ही नहीं है, ये तो केवल बाप का ही काम है। बाबा कहते हैं ये तो बाप का काम है, मनुष्य तो है ही विकारी, वे शांति स्थापन कैसे कर सकते हैं, घर घर में ही झगड़ा है। अब घर घर में देखो, बाहर जाके शांति की बात किया, घर घर में ही झगड़ा है, घर घर में झगड़ा है। बाप को ना जाने के कारण बिल्कुल ही निधन के बन पड़े हैं। सतयुग में बिल्कुल ही पवित्रता सुख शांति थी, अभी फिर बाप पवित्रता सुख शांति स्थापन कर रहे हैं और कोई कर न सके। बाबा के सिवाय पवित्रता सुख शांति और कोई स्थापन कर न सके। भारतवासी अब नरकवासी हैं, स्वर्ग में जब थे तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में ही लेते थे, अब पतित हैं, और अभी क्या है, पतित हैं तो पुनर्जन्म भी नरक में ही लेते ना। तो बाबा कहते अब पतित हैं, इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं। अभी तो बच्चे जानते हैं परलौकिक बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, ये बात केवल ब्राह्मण बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानते। दुनिया में कौन है भगवान को याद करो पाप विनाश होंगे, वो समझते नहीं, याद ही नहीं कर सकते, क्योंकि कैसे बाबा को याद करें। ब्राह्मण भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, बाबा को याद करते, और उनसे अच्छे ब्राह्मण क्या है, बाबा हम आपको याद नहीं कर सकते। बाबा कभी हंसते थे, कभी कभी बच्चे बाबा के पास आते थे, बाबा को कहते बाबा हम आपको भूल जाते, बाबा हंस लेते थे, मुस्कुरा दे, कहते बाबा के सामने बैठा है, बाबा को देख रहा, और बाबा को कहते हम आपको भूल जाते। तो बाबा कहते कितने भोले बच्चे हैं, कितने भोले हैं, बाबा उनको याद करता है, वो बाबा को भी याद करते हैं, इसलिए कभी ये नहीं कहना कि हम बाबा को भूल जाते। भट्टी में भी पक्का करना है कि अब हमको ये शब्द नहीं बोलना है कि हम बाबा को भूल जाते हैं। बाबा ने कहा तो याद है, उस दिन भी बाबा ने कहा ना, लौकिक बच्चा बाप को देखेगा झट उसके गले लग जाएगा, ये थोड़ी कहेगा कि मैं भूल जाता हूँ। तो बाबा कहते बच्चों को ये शब्द अभी नहीं बोलना, बाबा हम तो आपको भूल जाते हैं। बोलो नहीं बाबा हमारे दिल में, बोलो क्या बोलोगे भट्टी वाले, बाबा कहाँ है, बोलो जोर से बोलो, बाबा हमारे दिल में और आप, हाँ ये पक्का करना है, बाबा हमारे दिल में, हम बाबा के दिल में कैसे भूलोगे, भूल ही नहीं सकते अभी, पक्का है ना, ठीक है। अब बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं परलौकिक बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, लौकिक बाप से तो हद का वैसा मिलता है, परलौकिक बाप परलौकिक बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, ये भी तो समझने की बातें हैं, ये कोई सत्संग नहीं है। अब ये क्या है बताओ, ये क्या है, सत्संग नहीं है तो क्या है बताओ, भट्टी वाले बताओ भाई क्या चीज है, आप कहाँ बैठे हो बोलो ना, कहाँ बैठे हो और बोलो, हम स्कूल में बैठे हैं, पाठशाला में बैठे, लेकिन छोटे बच्चे नहीं, बोलो यूनिवर्सिटी में बैठे, जो यूनिवर्सिटी में बैठे वो हाथ खड़ा करो, अच्छा जो कहते हैं पाठशाला में बैठे वो हाथ खड़ा करो, पाठशाला वाले भी है, ये परिवार भी है, फैमिली भी है, पाठशाला भी है, कॉलेज भी है और यूनिवर्सिटी है, और बाबा का घर और अपने घर, तो बोलो हम अपने घर में बैठे है ना, अपने घर में बैठना है, फिर ऐसा नहीं कहो हम यहाँ बैठ जाए, बाबा कहते बैठना नहीं है, जाओ सेवा करो, तो ये होता है। तो बाबा कहते हैं परलौकिक बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, ये समझने की बातें हैं, ये कोई सत्संग नहीं है, वह है भक्ति मार्ग और ये है ज्ञान मार्ग, तुमको खुशी होती है बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते, और किसी को बोले हम स्वर्गवासी बनते हैं वो कहेंगे इनको क्या हो गया, लेकिन हम तो जानते हैं ना हम स्वर्ग में जाएंगे, तुमको खुशी होती है बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते, जो कल्प पहले स्वर्गवासी बने थे वही अब बनेंगे, ब्राह्मण बनने बगैर देवता कभी बन नहीं सकेंगे, पक्का गारंटी, ब्राह्मण बनने बगैर देवता कभी बन नहीं सकेंगे, ये भी समझने की बातें है ना। अभी तो भारत में कोई कला रही नहीं है, किसको भी पता नहीं पड़ता है कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े और बाबा ने तुमको अभी तुमको जगाया, बाबा ने उन को विश्व की आत्माओं को बच्चे संदेश देते, लेकिन बाबा ने किसको जगाया, हम बच्चों को जगाया, बाबा ने ही तुमको जगाया है, अभी तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने, सिवाय बाप के और कोई बना नहीं सकते, स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को और नरक कहा जाता है कलयुग को, यथा राजा रानी तथा प्रजा, अभी सब विकार से पैदा होते हैं, देवताएं कभी विकार से पुनर्जन्म नहीं ले, देवताएं ना तो विकार से पैदा होते हैं ना कभी विकार से पुनर्जन्म लेते हैं, बच्चे अभी बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते, अब बाबा बच्चों का सर्टिफिकेट दे रहे, बच्चे अभी बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, लेकिन चलते चलते हार खा लेते, अब जिसको बाबा कहते हैं ऊपर मंजिल से गिरेगा पांचवी छठी मंजिल से गिरेगा तो क्या होगा कि सब हड्डियां ये टूट जाएंगी, तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते लेकिन चलते चलते हार खा लेते हैं, फिर की कराई कमाई चट हो जाती, कभी कभी बाबा कहते थे बच्चे बाबा को अपना क्लियर चार्ट लिखते थे सच्चाई से, बाबा कहते घबराओ नहीं फिर से खड़े हो जाओ फिर से पुरुषार्थ करो, कई ऐसे तो बताते ही नहीं थे, फिर बाबा को कहना पड़ता था इतनी कमाई किया और सारी कमाई जो है वो चट हो गई है, तो बाबा कहते हैं लेकिन चलते चलते हार खा लेते हैं, फिर की हुई कमाई चट हो जाती है, बड़े जोर से चोट लगती है, कल भी बाबा ने कहा ना, माया कैसे मारती है, कितने प्रकार से मारती है, बड़े जोर से चोट लगती है, फिर क्या होता है रिजल्ट, क्या आश्चर्यवत सुनंती कथंती फिर भागंती हो जाती। जब बाबा के बनते तो इतना प्यार से सुनते हैं, इतना लगता है कि बाबा ने इतना समझाया, इतना कुछ बताया, बहुत खुश होते हैं, फिर दूसरों को भी सुनाते हैं, बहुत खुशी में रहते हैं, फिर माया से हार खाते हैं तो फिर माया के बन जाते हैं। फिर बाबा को कहना पड़ता है क्या आश्चर्यवत सुनंती कथंती फिर भागंती हो जाते हैं, भल साक्षात्कार भी करते हैं परंतु साक्षात्कार में माया की प्रवेश बहुत होता है। बाबा ने पहले से ही बता दिया था, शुरू में बहुत जाते थे ना, क्या कोई कहेगा मेरे के अंदर शिव बाबा आया, तो कई बार कईयों में कोई कहेगा मेरे अंदर बाबा आया, फिर कई तो ऐसे ऐसे होते थे कहते बाबा आया, बाबा को यही खाना यही खाना, बाबा थोड़ी डिमांड करते, वो समझ आते थे, कई जो समझदार थे समझ आते और कई भोले वाले समझते नहीं थे। तो बाबा कहते माया की प्रवेशता के कारण ज्ञान तो उनकी बुद्धि में बैठता नहीं है, फिर क्या हुआ भागंती हो गए। तो बाबा ने कहा भल साक्षात्कार किए लेकिन फिर कहाँ से कहाँ पहुंच गए, तो अब भल साक्षात्कार भी करते हैं परंतु साक्षात्कार में माया प्रवेश बहुत होते। अब इसलिए बाबा ने साक्षात्कार का पार्ट जो है ना वो बहुत कम कर दिया। अभी ज्ञान को स्पष्ट है सभी को, बाबा कहते ज्ञान की गहराई में जाओ, जैसे रेडियो में एक दो की बात नहीं सुन सके इसलिए बीच में गड़बड़ कर दे। उस समय तो रेडियो चलता था बाबा के टाइम पर, उस समय क्या होता था एक देश का दुश्मन दूसरे देश के दुश्मन के जो रेडियो प्रोसेस था जिससे वो एक दूसरे को मैसेज देते थे, वो कुछ न कुछ ऐसा कर देते थे ताकि उनका जो मैसेज दूसरे देश के जो लोग हैं उसको रियल ना पहुंच सके, सैनिकों के पास ना पहुंच सके, तो वो गड़बड़ कर देते थे। इसलिए बाबा बता रहे हैं जैसे रेडियो में एक दो की बात सुन नहीं सके इसलिए बीच में गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ भी ऐसे है। योग में माया विघ्न डालती है, सारी मेहनत योग में ही है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है, अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है एक बाप से सच्ची प्रीत रख सच्चा सच्चा पांडव बनना। एक बाप से सच्ची प्रीत रख सच्चा सच्चा पांडव बनना है। मूत सामने खड़ा है इसलिए पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। दूसरा काम महाशत्रु जो आदि मध्य अंत दुख देता है उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है। याद से विकारों की खाद निकाल आत्मा को गोल्डन एज्ड बनाना है। याद से विकारों की खाद निकाल आत्मा को गोल्डन एज्ड बनाना है। आज का वरदान मरजीवी जन्म के स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भव। मरजीवी जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भाव। लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मर जीवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। बाबा बता रहे हैं लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मर जीवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। कर्म बंधन नहीं सेवा का संबंध है। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। बाबा ने पॉइंट पक्की करा दी, वैरायटी आत्माएं वैरायटी पार्ट हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार के आत्मों का ज्ञान धारण करके चलेंगे तो तंग नहीं होंगे। लेकिन अति पाप आत्मा अपकारी आत्मा से भी नफरत व घृणा के बजाय रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे तो नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी व परोपकारी गाए जाएंगे। स्लोगन है समय व परिस्थिति प्रमाण वैराग्य आया तो ये भी अल्प काल का वैराग्य। समय जब आता है ना उस समय वैराग्य आ जाता है। तो बाबा कहती परिस्थिति प्रमाण आया तो अल्प काल का है, सादा काल का नहीं है। समय व परिस्थिति प्रमाण वैराग्य आया तो ये भी अल्पकाल का वैराग्य, सदा काल के वैरागी बनो। अब एक इशारे जो टाइटल चल रहा है सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। किसी भी प्रकार का विघ्न व समस्या अथवा माया का वार नहीं है, लेकिन खेल के समान अनुभव हो तो खेल समझने से खुशी खुशी पार कर लेंगे और अवस्था एक रस रहेगी। लेकिन अगर इसे वार समझेंगे तो घबराएंगे भी और हलचल में भी आएंगे। माया का काम है आना और आपका काम है क्या? काम है भगाना, नहीं विजयी बनना। कभी कहते ना भगाना, बाबा कहते माया का काम है आना और आपका काम है विजयी बनना। अच्छा, ओम शांति शांति। आप सभी को अच्छा एक सूचना है भट्टी के भाई बहनों के लिए। भट्टी में आए हुए सभी भाई बहने आज 10 बजे मेडिटेशन हॉल में पहुंचेंगे, क्योंकि आज का क्लास ठीक 10 बजे आरंभ हो जाएगा। बाकी ज्ञान शो में आपको मालूम है कि साइंटिस्ट और इंजीनियर विंग का प्रोग्राम चल रहा है, उस समय वो लोग क्या प्रोग्राम के साथ साथ कोई ना कोई ग्रुप को बुलाते हैं कल्चरल के लिए। इसलिए इस बार भिलाई से एक कल्चरल ग्रुप मेरा देश मेरा महान देश के बारे में एक उन्होंने कोई बहुत सुंदर कल्चर बनाया है। अगर जिस किसी के पास अपना वाहन का साधन है तो वो जा सकते हैं। और शाम को 8 बजे आरंभ होगा, 8:30 बजे ज्ञान शो के हार्मनी हॉल में होगा। जिनके पास अपना आने जाने का साधन है वो जा सकते हैं और जिनको मिले वो भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो और भी प्रोग्राम है उसी अनुसार देखते हुए जा सकते हैं। और बाकी तो आप समय को देख रहे हैं, बाबा कहते हैं समय से घबराओ नहीं, लेकिन अपनी स्थिति को पावरफुल बनाओ। और जितना अपनी स्थिति पावरफुल बनाते जाएंगे उतना हर कार्य सहज होता जाएगा। और साथ साथ बाबा ने एक इशारा ये भी दिया हुआ है कि विस्तार में नहीं जाए। बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, ये करें वो करें, बाबा ने ये इशारा दिया है। और अभी हम लोगों की मीटिंग में भी बात निकली है कि प्रोग्राम को ऐसा बनाया जाए जिसमें ज्ञान योग ज्यादा हो, बड़े बड़े पंप शो ना रहे।